डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 10 रोमियो 8:23 से 9:16 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 8:23 से 9:16 पर 17:10 है। हम रोमियो अध्याय 8 को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है। वास्तव में रोमियो 7:1 अध्याय है। यह काफी आत्मविश्लेषणात्मक है। मेरा हार का अध्याय। यह मास का एक अध्याय है। रोमियो 8 में बाइबल के किसी भी अन्य अध्याय से अधिक पवित्र आत्मा का उल्लेख है। यह विजेताओं से भी बढ़कर होने का अध्याय है, उन लोगों के लिए जबरदस्त जीत का अध्याय है जो देह में रहने वालों के विपरीत आत्मा में हैं, अर्थात जिन लोगों में केवल स्वयं पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर की आत्मा काम करती है। खैर, हमने अंतिम सत्र में कराहना और रोमियो 8 के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है के बारे में बात करना छोड़ दिया, लेकिन यह निर्गमन की पुस्तक का भी उदाहरण देता है। इसलिए इस बिंदु पर मैं रोमियो 8 में नए निर्गमन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यह कई बिंदुओं पर दिखाई देता है। अब मैंने कई साल पहले स्नातक स्तर पर अपने गुरु बेनी अकर से इनमें से बहुत सी चीजें सीखी थीं, लेकिन दूसरों ने इसे अतीत में हमने जो किया है उससे कहीं अधिक विकसित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि यहाँ बहुत सारे भ्रम मिश्रित भ्रम हैं। भविष्यवक्ताओं ने एक नए निर्गमन की बात कही। होशे अध्याय 2 में आपके पास यह है, मैं तुम्हें जंगल में फुसलाकर ले जाऊंगा और अपने साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा जैसा कि मैंने जंगल में किया था। और होशे अध्याय 11, ठीक है, जब इज़राइल छोटा था मैं उससे प्यार करता था, मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया और झुककर प्रेम से उनको खिलाया, परंतु उन्होंने न सुनी, और इसलिए मैं उन्हें फिर से विदा करने जा रहा हूँ, केवल इस बार मिस्र नहीं बल्कि अश्शूर उनका राजा होगा। परंतु तब परमेश्वर की आवाज टूटे हुए प्रेम से फूटती है और कहती है, हे एप्रैम, मैं तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मैदान के उन नगरों के समान कैसे बना सकता हूँ जिन्हें मैंने नष्ट कर दिया? उन्होंने मेरे क्रोध में पलट दिया जिस पर मैंने आग सुलगा दी। इसके बजाय मेरा अपना हृदय मेरे भीतर उलट गया है और मेरी सारी करुणा, मेरा अपना हृदय मेरे साथ उलट गया है। मेरी सारी करुणा भड़क उठी है और मैं पुकारूंगा और मेरे बेटे पश्चिम से कांपते हुए आएंगे। वे अश्शूर देश से पक्षियों की नाई और मिस्र देश से कबूतरों की नाई कांपते हुए आएंगे, और वे फिर मेरे लोग होंगे। वह एक नए पलायन की बात करता है जहां वह अपने लोगों को अपनी भूमि पर वापस लाता है। यह आपके पास यशायाह अध्याय 11 में है। आपके पास सियोन की ओर लौटने वाला यह राजमार्ग है और संदेशवाहक इसकी घोषणा कर रहे हैं, जिसे हम बाद में रोमियो में देखेंगे। और यशायाह अध्याय 40 श्लोक 3 में, हमारे परमेश्वर के लिए जंगल में एक राजमार्ग तैयार करें जो सभी चार सुसमाचारों में जॉन द बैप्टिस्ट पर लागू होता है। कमांड समुदाय ने इसे अपने ऊपर लागू किया। वे एक नए पलायन की उम्मीद कर रहे थे। प्रारंभिक यहूदी धर्म में इस नए निर्गमन की अपेक्षा की जाती रही। ठीक है, रोमियो 8 में वह बताता है कि कैसे हम आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं, जैसे इसराइल का नेतृत्व जंगल में आग के खंभे और बादल द्वारा किया गया था। यह परमेश्वर को परमेश्वर की संतान के रूप में अपनाने की बात करता है, अध्याय 8 श्लोक 14-16 तक। और फिर श्लोक 23 में, उसकी पूर्णता, हमारे शरीर की मुक्ति, हमारी विरासत, जैसे कि इज़राइल वादा किए गए देश में अपनी विरासत की प्रतीक्षा कर रहा था, 8:17। यह बंधन के कारण कराहने की बात करता है। निर्गमन अध्याय 2 श्लोक 23 और 24 में यह कहा गया है कि इज़राइल ने अपने बंधन के कारण आहें भरी और भगवान ने उनकी आहें सुनी, और यह वैसा ही है। खैर, यह यहाँ सजातीय ग्रीक शब्द है जहाँ वे कराह रहे थे और भगवान ने उनके बंधन के कारण उनकी कराह सुनी, और इसलिए यहाँ हम कराहते हैं क्योंकि हमारा शरीर अभी भी इस दुनिया में भ्रष्टाचार की गुलामी में है। खैर, वनस्पतियों के अर्थ में भ्रष्टाचार, जैसा कि ग्रीक स्रोतों में कभी कभी एंट्रापी जैसी किसी चीज के लिए उपयोग किया जाता था, आप जानते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, शरीर विघटित हो जाते हैं इत्यादि। हम उस बंधन से नाशवान होने तक मुक्त होने के लिए कराह रहे हैं जब तक कि हम अविनाशी नहीं बन जाते, पॉल में कहीं और से भाषा उधार लेने के लिए, और अपने शरीर की मुक्ति की आशा कर रहे हैं। पुनः वह निर्गमन भाषा हो सकती है रोमियो 8:23, लेकिन हमने अभी तक अनुभव पूरा नहीं किया है। जस्टिन जैसे कई शुरुआती चर्च फादर, खासकर जब वह ट्राइफो चर्च के कई फादर और बरनबास और अन्य लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, स्यूडो बरनबास चर्च के कई फादर यह समझाने के लिए परेशान थे कि कैसे पहली बार आना था और एक दूसरा आ रहा है। आप जानते हैं, वे लैव्य व्यवस्था 16 इत्यादि में दो बकरियों को देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉल के पास भी यह है क्योंकि भगवान के लोगों को मिस्र से बाहर ले जाया गया था, लेकिन तब एक अंतरिम अवधि थी जब वे वादा किए गए देश में आने से पहले जंगल में थे। उनका उद्धार दो चरणों में हुआ, और पॉल के लिए भी यह दो चरणों में होता है। यह पहले से ही है, अभी तक नहीं। अध्याय 8:23, पॉल कहता है कि हमारे पास आत्मा का पहला फल है रंगभेद, जिसका अर्थ कुछ वैसा ही है जब वह आत्मा के अग्रिम भुगतान के बारे में बात करता है। पहला फल केवल भविष्य की फसल का वादा नहीं था, यह फसल की वास्तविक शुरुआत थी, फसल का पहला भाग जो प्रभु को अर्पित किया जाना था। इसलिए जब वह हमारे पास आत्मा का पहला फल होने की बात करता है, तो हमें भविष्य की दुनिया का पूर्वाभास हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस दुनिया में पीड़ित नहीं हैं। हम अभी भी अपने शरीर की मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि भगवान नाटकीय तरीके से हमारे अंदर काम कर रहे हैं। इतना अधिक हम इसे नए नियम में इतनी बार देखते हैं कि यह इस विचार की तरह हो सकता है कि दुनिया को हमें देखने में सक्षम होना चाहिए, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरह से हम अनुबंध में रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध। दुनिया को हमें देखने और यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि स्वर्ग या भविष्य की दुनिया कैसी होगी। पॉल इसका उपयोग कहीं और करता है, 1 कुरिन्थियों 15:20 में, जब वह मसीह को मृतकों में से पुनरुत्थान के पहले फल के रूप में बोलता है। किसी दिन सभी मृतक एक साथ जीवित हो उठेंगे, कम से कम सभी धर्मी एक साथ, और फिर हमें यीशु में उसका पूर्वस्वाद मिलता है। यही कारण है कि सदूकियों ने पुनरुत्थान में विश्वास करने के लिए फरीसियों पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन अधिनियम 4:2 में मेरा मानना है कि यह कहता है कि उन्होंने प्रेरित पतरस और जॉन को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वे यीशु में पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। मृत न केवल भविष्य के लिए एक सैद्धांतिक आशा के रूप में, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसने इतिहास पर पहले ही आक्रमण कर दिया है, जॉर्ज लैड से उधार ली गई और गॉर्डन फी और कई अन्य लोगों द्वारा विकसित भाषा का उपयोग करने के लिए। तो आत्मा का पहला फल भविष्य के संदर्भ में सोचना, वर्तमान में प्रवेश करना है। आपके पास वह विचार कहीं और है, यह आपके पास रोमियो में कहीं और है, जैसे रोमियो 12:2 में, जहां वह वस्तुतः इस युग के अनुरूप नहीं होने की बात करता है, बल्कि आपके दिमाग के नवीनीकरण द्वारा परिवर्तित होने की बात करता है। आपके पास पॉल में कहीं और है, गलातियों 1:4 मसीह ने हमें इस वर्तमान बुरे युग से बचाने के लिए हमारे पापों के लिए स्वयं को दे दिया। आपके पास यह पॉल से परे है इब्रानियों 6, जहां यह कहता है कि हमने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है और हमने आने वाले युग की शक्तियों का भी स्वाद चखा है। लेकिन विशेष रूप से पूर्वस्वाद के रूप में आत्मा के संदर्भ में हमने इसके बारे में बात की है। अहबोन अग्रिम भुगतान 2 कुरिन्थियों 1:05 और इफिसियों 1 और 1 कुरिन्थियों 2 के बारे में भी हमने बात की है। आँख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, परंतु परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा ये बातें हम पर प्रकट की हैं। खैर, हमारे पास पहले से ही है, अभी तक नहीं। हमें भविष्य का पूर्वाभास है और हम इस पूर्वानुभव को 8:27 में अधिक देखते हैं, जहां पॉल उस व्यक्ति के बारे में बात करता है जो दिलों और दिमागों को जांचता है। हम भजन और यिर्मयाह से जानते हैं कि वह कौन है। हम इसे पुराने नियम से जानते हैं। वास्तव में हम इसे दिल और दिमाग के खोजकर्ता ईश्वर के लिए एक उपाधि के रूप में उपयोग करते हैं। यह कहता है कि वह आत्मा के मन को जानता है। तो आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा परमेश्वर के अनुसार हमारे लिए मध्यस्थता करता है। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए, और हमारे भीतर की आत्मा इन जरूरतों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेगी। आत्मा ही हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है। आत्मा हमारे भीतर है और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। श्लोक 34 में हम देखेंगे कि मसीह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे लिए मध्यस्थता करता है। तो हमारा ख्याल रखा जाता है। मेरा मतलब है, प्रार्थना समर्थन के बारे में बात करें। मैं प्रार्थना समर्थन की भर्ती करता हूँ। मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि उन्हें प्रार्थना करना बहुत पसंद है, और मैं उनसे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, और मैं उन्हें अपने प्रार्थना अनुरोधों पर रखता हूँ। लेकिन हमारे पास वास्तव में सर्वोत्तम संभव प्रार्थना सहायता है, जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से भी आगे निकल जाती है। हमारे भीतर स्वयं आत्मा है, और उनके भीतर भी आत्मा निस्संदेह ईश्वर से प्रार्थना भी करता है। और वास्तव में हाँ, यदि वे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आत्मा उनके भीतर है, तो यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन भले ही आप कहीं बाहर हों और आप पूरी तरह से अलग थलग इलाके में सुसमाचार साझा कर रहे हों, पॉल ने ऐसा केवल दबाव में किया। उन्होंने एथेंस में ऐसा किया था। उसके साथ आमतौर पर कोई न कोई रहता था। लेकिन आपके पास अभी एक छोटी सी टीम है। आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं और यीशु के बारे में नहीं समझते हैं। यह सोच का एक बिल्कुल अलग ढांचा है। परमेश्वर की आत्मा अभी भी आपके भीतर हिमायत करने के लिए मौजूद है, और ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। 8:28 हम देखते हैं कि आत्मा हमारे भीतर मध्यस्थता कर रहा है। ईश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ईश्वर सभी चीजें भलाई के लिए करता है। यह सिर्फ पाठ्य संस्करण नहीं है। संभवतः ऐसा नहीं है कि सभी चीजें अच्छे के लिए ही काम करती हैं। लेकिन चाहे आप शाब्दिक रूप से ही क्यों न लें, विचार यह है कि ईश्वर ही है जो ऐसा करता है। भगवान अच्छे के लिए काम करते हैं। यह वैसा ही है जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ठीक है, तुमने इसे बुराई के लिए कहा था, लेकिन भगवान ने इसे भलाई के लिए कहा था। परमेश्वर ने इसे इस तरह से कार्यान्वित किया कि इससे पूरे परिवार को मुक्ति मिल गई, और इससे मिस्र के लोगों, कनान के लोगों और अन्य लोगों को मुक्ति मिल गई। जब इतिहास में बाद में निर्गमन और विजय पर निर्णय आता है, तो निर्गमन में विपत्तियों में जो समृद्धि वापस खींची जा रही है, वह समृद्धि थी जिसे शुरुआत में भगवान ने दिया था। और यहोशू और न्यायाधीशों की पुस्तक में कनानियों के वंशज वास्तव में उन लोगों के वंशज थे जिनके जीवन पहले बचाए गए थे। और वास्तव में ईश्वर के पास न्याय करने का अधिकार होने के संदर्भ में हम सभी को शुरू से ही उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए किया। और अक्सर भगवान हमारे जीवन में भलाई के लिए चीजें उन तरीकों से करते हैं जिन्हें हम देखते हुए जीते हैं, और मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। मेरी कुछ गहरी त्रासदियों में भगवान ने भलाई के लिए काम किया है। कभी कभी जिस तरह से वह उनकी भलाई के लिए काम करता है, यह 2 कुरिन्थियों 1 की तरह है, आपकी खुद की टूटन में, क्योंकि आपने टूटन के बीच में भगवान के आराम का अनुभव किया है, आप दूसरों को सांत्वना देने में सक्षम हैं जो टूटे हुए हैं। हम अन्य लोगों, टूटे हुए लोगों के साथ एक ही दुनिया में रहते हैं, और हम उनकी तरह अक्सर टूटे हुए लोग होते हैं, और यह हमें उनके साथ एक जुड़ाव प्रदान करता है। लेकिन क्योंकि हमने ईश्वर की कृपा का अनुभव किया है, हम उनकी टूटन के बीच भी उस कृपा को उनके साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन अंततः, और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी चीजों को अच्छे के लिए काम करने की लंबी श्रृंखला है, क्योंकि भले ही हम इस जीवन में इसे देखने के लिए जीवित न रहें, मेरा मतलब है भगवान मेरी मृत्यु को अपने भले के लिए काम करता है। भले ही हम इस जीवन में इसे देखने के लिए जीवित न रहें, परम अच्छा यह इतिहास में भगवान के उद्देश्यों की भलाई के लिए है जिसे वह पूरा कर रहा है, परंतु यह हमारी भलाई के लिए भी है, क्योंकि वह कहता है हम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। और वह श्लोक 29 में इसे और अधिक समझाते हुए कहते हैं कि हमें उनके पुत्र की छवि के अनुरूप बनने और महिमामंडित होने के लिए पूर्वनियत किया गया है, जैसा कि वह वर्णन करते हैं कि जब हमारे पास महिमामंडित शरीर होते हैं और पूरी तरह से होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है उनकी छवि के अनुरूप। मुझे लगता है कि इसका संबंध पीड़ा से है, विशेष रूप से फिलिप्पियों के अध्याय 3 में पॉल द्वारा इसी प्रकार की भाषा के उपयोग को देखते हुए, जब पॉल कहता है कि यदि हम मसीह में भागीदार हैं तो हम उसकी मृत्यु के अनुरूप हैं, हम भी भागीदार होंगे उसके पुनरुत्थान में। और साथ ही फिलिप्पियों में अन्यत्र जहां यह हमारे शरीर को उसके गौरवशाली शरीर के समान रूपांतरित करने की बात करता है, रोमियो अध्याय 8:29-30। यहाँ हमारे पास अलंकारिक शब्दों में एक श्रृंखला या जादूटोना है, जैसा कि हमने अध्याय 5 में किया था, जिसे उसने पहले से जान लिया था, जिसे उसने पहले से ही निर्धारित कर लिया था, जिसे उसने पहले से ठहराया उसी को बुलाया, जिसे बुलाया उसने उचित ठहराया, जिसे उसने उचित ठहराया उसकी महिमा की। इसे एक पूर्ण कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। मेरा मतलब है हमारे शरीर का महिमामंडन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक रूप से बात कर रहा है तो यह उतना ही अच्छा है जितना कि किया गया, क्योंकि उसने पहले ही हमें पहले से ही जान लिया था। तो इसे इस तरह से देखा जा सकता है। कुछ अन्य लोगों ने कहा है, ठीक है, जिस तरह से क्रियाएं फिर से काम कर रही हैं, वह पूरी क्रिया को बाहर से देख रही है, इसलिए वह इसे पूरा होते हुए देख रहा है, क्योंकि वह इसे बाहर से देख रहा है बजाय इसके कि यह उतना अच्छा है जितना किया गया है। अब इसका क्या मतलब है कि भगवान ने पहले ही जान लिया था? कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर ने हमें पहले ही जान लिया था कि उसने हमें चुना है, लेकिन क्या ईश्वर की पसंद मनमानी है या ईश्वर की पसंद का कोई कारण है? क्या इसका हमसे कोई लेना देना है? कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही जान लिया क्योंकि उसने मसीह के लिए हमारे फैसले को पहले से ही जान लिया था और इसलिए उसने हमें उसी के अनुसार पहले से ही निर्धारित कर दिया। आपके यहाँ केल्विनवादियों और आर्मेनियाई लोगों के बीच बहस होती है और मैं आमतौर पर उन बहसों में पढ़ना पसंद नहीं करता। मेरे दोनों तरफ मित्र हैं और वास्तव में मैं एक मित्र के साथ एक स्थिति ले रहा था जो बाइबल का विद्वान भी है और मैं उस स्थिति पर बहस कर रहा था और वह दूसरी स्थिति ले रहा था और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर हम असहमत हों क्योंकि हम दोनों बाइबल के विद्वान थे और हम दोनों पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी पाते थे उसके साथ अपने विचारों में सामंजस्य बिठा रहे थे। और अंत में मैंने कहा, ठीक है, आप मेरे विचार से सहमत हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आप मेरा विचार रखें। इसलिए मैं आम तौर पर अब इसके बारे में लोगों से बहस नहीं करता क्योंकि लोग इन सभी शब्दों को बिल्कुल एक ही तरीके से परिभाषित भी नहीं करते हैं। लेकिन यह कहने के लिए कैल्विनवादियों और आर्मेनियाई दोनों का मानना है कि भगवान को एक व्यक्ति को आकर्षित करना होगा। हम स्वयं में ईश्वर द्वारा स्पर्श किए बिना ईश्वर की कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं। कैल्विनवादी और आर्मेनियाई, हम सभी इससे सहमत हैं। हम भी सहमत हैं और हर कोई जानता है कि हम इस पर सहमत हैं कि भगवान ही हैं जिन्हें हमें बचाना है। यह उसकी आत्मा है जो हमें नया बनाती है। हम इस बात से भी सहमत हैं कि किसी व्यक्ति को बचाए जाने के लिए अंत तक प्रयास करना होगा। तो यह वास्तव में कोई बहस नहीं है जिसमें हमें शामिल होने की आवश्यकता है। बाइबल के कुछ भाग इब्रानियों की तरह हैं। यदि मैं केवल इब्रानियों की व्याख्या कर रहा होता तो मैं आपको एक आर्मेनियाई की तरह लगता। यदि मैं केवल रोमियो 8:9-10 और 11 की व्याख्या कर रहा हूं, तो मैं एक कैल्विनवादी की तरह लग रहा हूं। मैं सिर्फ पाठ को ईमानदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि भगवान वास्तव में हमसे इतना अधिक चतुर है कि पूरी बड़ी तस्वीर इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, यह संपूर्ण बाइबल धर्मशास्त्र को शामिल करता है और कभी कभी हम उन विवरणों पर चुटकी लेते हैं जिनके बारे में हमें गलती करने की आवश्यकता नहीं होती है। और वह भगवान इतना संप्रभु है कि ईश्वर संप्रभु रूप से हमें कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा और मानवीय जिम्मेदारी देने का विकल्प चुन सकता है और उसके भीतर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। भगवान की रचना बहुत उत्तम है। मेरा मतलब है, भगवान को 6 शाब्दिक दिन नहीं लेने पड़े। यदि आप 6 शाब्दिक दिन लेते हैं तो भगवान को दुनिया बनाने के लिए 6 शाब्दिक दिन नहीं लेने पड़े। और यदि आप इसे 13-15 अरब वर्ष माने तो भगवान को दुनिया बनाने में 13-15 अरब वर्ष नहीं लगे। मैं बाद वाले दृष्टिकोण की ओर रुझान रखता हूँ, लेकिन आप जो भी दृष्टिकोण अपनाए, ईश्वर अस्तित्व में सब कुछ बोल सकता था और इसे पूरी तरह से जिस तरह से वह चाहता था ठीक उसी तरह से बना सकता था। वह हमें वैसा बना सकता था जैसा प्लेटोनिक ने सोचा था और ओरिजन ने वास्तव में सोचा था कि पुनरुत्थान शरीर एक गोला होगा क्योंकि उसने कहा था कि यह एकदम सही आकार है। कभी कभी जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास अपने विचार थे कि चीजें कैसे सही होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट रचना बनाई है। प्रकृति में हमारे पास गोलाकार शरीर हैं, लेकिन मेरा मतलब है पेड़ और पेड़ों पर पत्तियां वगैरह, मेरा मतलब है भगवान। वैसे भी मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हो जाता हूँ और कभी कभी मैं उपदेश देने के लिए प्रलोभित हो जाता हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं पाठ के बारे में उत्साहित हूँ, लेकिन मैं यह भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह कभी कभी हमारी कल्पना से भी बड़ा है और धर्म ग्रंथ कभी कभी इसे ईश्वर के ज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है और कभी कभी यह इसे मानवीय अनुभव के दृष्टिकोण से देखता है और दोनों वास्तविक हैं। साथ ही कुछ ईसाई दार्शनिकों ने इस बारे में बात की है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन ईश्वर इतिहास के भीतर भी काम करता है और हमारे साथ उस स्तर पर भी काम करना चुनता है। तो बहुत सी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम एक विशेष अनुच्छेद कर रहे हैं, इसलिए कृपया समझें कि मैं यह विशेष अनुच्छेद कर रहा हूं। मैं उन चीजों को नकार नहीं रहा हूं जिन पर अन्य अनुच्छेदों में जोर दिया जा सकता है, बस इस अनुच्छेद के बिंदु पर जोर दे रहा हूं, और मैं चीजों को योग्य बनाता रहता हूं जो भी मैं आमतौर पर बात कर रहा हूं, लेकिन पूर्वनीति संदर्भ के लिए प्रासंगिक है। अध्याय 9 श्लोक 11 और उसके बाद, परमेश्वर ने याकूब के जन्म से पहले ही याकूब को चुन लिया। रोमियो 9 के संदर्भ में बात यह है कि ईश्वर जातीयता के आधार पर चयन करने के लिए बाध्य नहीं है। खैर, पॉल ने यहां इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। यहां मानवीय जिम्मेदारियां पसंद के इतने मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस पर केंद्रित नहीं है, लेकिन वे अन्य संदर्भों में प्रकट हो सकते हैं। इसलिए पूरक विशेषताओं को पहचानना अच्छा है, और जब आप अपना संपूर्ण धर्मशास्त्र बनाते हैं तो सभी अनुच्छेदों को ध्यान में रखें। हम में से बहुत से लोग वास्तव में कुछ अंशों में अच्छे हैं, और हम चीजों को एक साथ फिट नहीं करते हैं। रोमियो 8 आयत 31, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और वह भजन 118 श्लोक 6 को प्रतिध्वनित करता है, जो हलाल का हिस्सा है, जो फसह के मौसम के दौरान इस्तेमाल किया गया था। भजन 113 से 118 तक, प्रभु मेरे लिए है, मुझे इस बात का डर नहीं रहेगा कि कोई मेरे साथ क्या करेगा। और सेप्टुआजेंट में इसे हिब्रू से थोड़ा अलग तरीके से रखा गया है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं इस बात से नहीं डरूंगी कि कोई मेरे साथ क्या करेगा। किसी भी स्थिति में वह यहां भजनों की भाषा को प्रतिध्वनित कर रहा है। वह पूरे समय पवित्र शास्त्र को प्रतिध्वनित करता है। पॉल धर्मग्रंथ से परिपूर्ण था। रहस्योद्घाटन की पुस्तक, जिसमें कई शास्त्रीय उद्धरण नहीं हैं, बस हर जगह इसकी प्रतिध्वनि है। तो हम देख सकते हैं कि ये लेखक पवित्र शास्त्र से भरे हुए थे, परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे। परमेश्वर ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, पद 32। बहुत से लोग यहाँ उस चीज की प्रतिध्वनि देखते हैं जिसे अकेदा कहा जाता है, इसहाक का बंधन, जहाँ इब्राहिम ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा बल्कि उसे सौंप दिया। मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में यहाँ प्रतिध्वनित हुआ है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से यह हमें एक बेटे के बलिदान के दर्द और बलिदान की तस्वीर दे सकता है। और आप में से कोई भी जो पिता है कह सकता है, ओह यह कठिन होता, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को सौंप दिया। वही भाषा जो अध्याय 4 श्लोक 25 में है, जहां परमेश्वर ने उसके पुत्र को छुड़ाया। और फिर पुत्रत्व की भाषा, पिता के साथ घनिष्ठता और स्नेह के साथ साथ उनकी महान भूमिका के साथ यीशु के संबंध में उपयोग की जाती है। यहां ओमर का एक अंतर्निहित आह्वान है। और कितने तर्कों के लिए कॉल ऑफ ओमर एक यहूदी नाम था। इसका उपयोग अन्य जातियों द्वारा भी किया जाता है, लेकिन यीशु पढ़ाते समय अक्सर इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, यदि तू दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है तो तेरा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, या लूका में अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा, लूका 11:13। यहाँ ठीक है, यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह हमें सब कुछ क्यों न देगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर भाग सकते हैं और कह सकते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में भाग सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है भगवान, मुझे वह चाहिए, वह 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 और वह। इसका मतलब यह नहीं है। संभवतः यह 5:17 के अनुसार है, वे जीवन में शासन करेंगे, अर्थात पुनरुत्थान के जीवन में किसी दिन हमारे पास सब कुछ होगा। आने वाली दुनिया हमें विरासत में मिलेगी। जैसा कि उन्होंने अध्याय 4 में और अध्याय 8 में भी कहा था, हमारे पास एक विरासत है जो हमारा इंतजार कर रही है। और यदि उसने हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा होगा? हम पर आरोप कौन लगाएगा? वह अध्याय 8 श्लोक 33 और 34 में कुछ अलग अलग तरीकों से कहता है। खैर, आरोप का विचार यहूदी लोग शैतान को एक आरोप लगाने वाले के रूप में समझते थे। आपके पास अय्यूब 1 और 2 में प्रतिद्वंद्वी हस्तन के साथ है, जहां वह भगवान के सामने अय्यूब पर आरोप लगा रहा है और फिर बाहर जाता है और अय्यूब को पीड़ित करता है, जो कुछ भी करने की उसे अनुमति मिल सकती है। जकर्याह अध्याय 3 शैतान महायाजक यहोशू के पास आ रहा है और उस पर आरोप लगा रहा है। और फिर भगवान ने यहोशू के समर्थन में बोलने के लिए एक देवदूत को भेजा। खैर, शैतान एक अभियुक्त के रूप में प्रकट होता है और यह अभी भी नए नियम में है, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 श्लोक 10 में पढ़ते हैं, जहां शैतान एक अभियुक्त है और भाइयों और बहनों पर आरोप लगाने वाले को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे नीचे गिरा दिया गया है ताकि वह उन पर और कोई आरोप न लगा सके। और रहस्योद्घाटन में इसके बारे में मेरी समझ विवादास्पद है। प्रकाशित वाक्य 12 के बारे में मेरी समझ यह है कि बच्चे को स्वर्ग में उठा लिया गया है। वह यीशु है जिसे अपने सिंहासन के सामने लोहे की छड़ी के साथ राष्ट्रों पर शासन करने के लिए स्वर्ग में उठाया गया था। और उस समय जब उसे राष्ट्रों पर शासन करने के लिए पकड़ लिया जाता है और वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने होता है, तो वह हमारा मध्यस्थ होता है। आरोप लगाने वाले के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं बची है। वह अब हम पर आरोप नहीं लगा सकते। और यही कारण है कि विश्वासी मेमने के खून और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजय पाने में सक्षम हुए, न कि अपने प्राणों को मृत्यु तक प्रिय मानकर। खैर, यहां शैतान परमेश्वर के सामने हम पर आरोप नहीं लगा सकता। और यहूदी परंपरा ने आरोप लगाने वाले, प्रलोभन देने वाले और धोखेबाज के रूप में शैतान की भूमिका पर जोर दिया। पुराने नियम में आपके पास पहले से ही आरोप लगाने वाला और प्रलोभन देने वाला था, लेकिन यहूदी साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और बाद में रब्बियों ने वास्तव में कहा कि शैतान प्रायश्चित के दिन को छोड़कर हर दिन, दिन और रात भगवान के सिंहासन के सामने हम पर आरोप लगाता है। और प्रायश्चित के दिन को बाहर रखने का एक कारण यह था कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और उन्होंने कहा कि हिब्रू में शैतान के नाम का संख्यात्मक मान 364 है। इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि अंतिम दिन के साथ क्या करना है। लेकिन क्योंकि यीशु पिता के सामने हमारा मध्यस्थ है, शैतान पिता के सामने हम पर आरोप नहीं लगा सकता। वह आ सकता है और स्वयं हम पर आरोप लगाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वह अब पिता के सामने हम पर आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए वह कहते हैं, भगवान के चुने हुए पर कौन आरोप लगा सकता है? खैर, हम संदर्भ से जानते हैं, चुने गए वह हम हैं। वे हम ही हैं जो मसीह में हैं। यशाया 50 श्लोक 8 और 9। वह पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद की भाषा को प्रतिध्वनित कर रहा है, जो कुछ इस प्रकार है, हालांकि मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह निकट है। मुझे कौन जज करता है और मुझे कौन आंकता है? देखो, प्रभु मेरी सहायता करता है। मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा? और इसलिए हमारे पास यहां 8:33 और 34 की भाषा के समान है। भगवान के चुने हुए लोगों के खिलाफ कौन आरोप लगा सकता है? यह मसीह है जो उचित ठहराता है। यह ईश्वर है जो उचित ठहराता है। तो हम पर कौन आरोप लगा सकता है? और यहाँ वह कहता है कि ईश्वर ही वह है जो धर्मी ठहराता है। ठीक यशाया 50 की तरह यह ईश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसा मसीह मर गए, वह कहते हैं। मसीह जो हमारे लिए मरा, वही हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है। वह मामले की पैरवी करता है। और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि मसीह, जिसने पिता की आज्ञाकारिता में हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, पिता के सामने हमारा मामला हार जाएगा। नहीं, जब मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं तो हमें निंदा या अपराध के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि वह अध्याय 8 और पद 1 में कहते हैं। जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई निंदा नहीं है। अब फिर से ध्यान रखें, जैसे एक जॉन ने इस विरोधाभास को इस तथ्य के साथ संतुलित किया है कि उसकी आत्मा भी हमारे भीतर है, जो हमें ईश्वर का सम्मान करने में मदद करती है। प्राचीन काल में कभी कभी लोग अपने मामले की पैरवी स्वयं करते थे, लेकिन अक्सर ऐसे लोग भी होते थे जो मध्यस्थ के रूप में, वकील के रूप में उनकी ओर से मामले की पैरवी करते थे। विशेष रूप से इसके लिए ग्रीक शब्द पैराक्लेटोस पैराक्लेट है। और आप भी कर सकते थे, आपके पास भी आरोप लगाने वाले होंगे। इस अवधि में रोमन अदालतों में आपके पास बोलने के लिए हमेशा कोई नहीं होता था। लेकिन जहां तक आपके खिलाफ बोलने की बात है, तो आम तौर पर मामले इसी तरह शुरू किए जाते थे। सामान्य परिस्थितियों में कोई आप पर कुछ न कुछ आरोप लगाएगा, लेकिन हमारे पास एक मध्यस्थ है। हमारे पास एक जॉन की भाषा में पिता के सामने एक पैराक्लेटोस है। हमारे पास पिता के साथ एक वकील है, और यही हम यहां भी देखते हैं। ब्रानियों की भाषा में मलिकिसिदक के आदेश के बाद यीशु के स्वर्ग में महायाजक होने का क्या मतलब है? अब जब मैं पृष्ठभूमि के बारे में बात करता हूँ, जब मैं चीजें लिखता हूँ जैसे कि मैंने पृष्ठभूमि टिप्पणी लिखी है, तो मैं मुख्य रूप से अतिरिक्त बाइबल, विशेष रूप से नए नियम के लिए अतिरिक्त नए नियम की पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि लोग समझते हैं, आप जानते हैं, वे स्वयं नए नियम को जाने। हालांकि जब हम पाठ को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा मतलब है पृष्ठभूमि का हिस्सा, निकटतम पृष्ठभूमि का हिस्सा, पुराने नियम के धर्मशास्त्र के अलावा प्रारंभिक ईसाई पृष्ठभूमि है। हम जानते हैं कि यीशु ने क्या सिखाया था, हम उनके बारे में क्या जानते हैं, अनुयायियों ने विश्वास किया। वह उस आंदोलन का हिस्सा था जिससे ये पत्र निकले। यह इस बात से इनकार नहीं करता है कि अलग अलग जोर और अलग अलग लेखक हैं, लेकिन यह हमें उस संपूर्ण संदर्भ को समझने में मदद कर सकता है। चूंकि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं इसका उल्लेख करूं। अधिनियम देखें, यह इधर उधर भागने का खतरा है। मुझे पूरी बाइबल बहुत पसंद है, लेकिन वैसे भी रोमियो अध्याय 8 श्लोक 35 से 39 में हमारे पास यहां एक चियास्टिक संरचना है। हमने इसके बारे में अध्याय 2 में बात की थी। हमारे पास यह यहां भी है। विश्वासियों को मसीह के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। श्लोक 35 ए श्लोक 39 में भी कोई भी चीज विश्वासियों को मसीह में ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। फिर उसके पास 8:35b और 8:38 और 8:39a में कष्टों की एक सूची है। और फिर बीच में वह मुख्य बिंदु बताता है जो कि चियास में हमेशा सच नहीं था, लेकिन यहां प्रतीत होता है। विश्वासियों ने पूरी तरह से जीत हासिल की। अब या यह काबू पाने के लिए नेकाओ शब्द है, और फिर यह मिल गया है, यह हुपर द्वारा तीव्र हो गया है। जैसे हम अतिविजय प्राप्त करते हैं, हम अत्यधिक विजय प्राप्त करते हैं। बस निश्चित रूप से हम जीतेंगे। अध्याय 8 श्लोक 35 और 36, बस यह देखने के लिए कि इनमें से कुछ परेशानियां क्या थीं। इनमें से कुछ वास्तव में ऐसी परेशानियां थीं जिनसे रोमन विश्वासी गुजरे थे। उनमें से कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे पॉल को गुजरना होगा, और इनमें से कुछ चीजें ऐसी परेशानियां थीं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अकाल। पॉल इन्हें बेतरतीब ढंग से सूचीबद्ध कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब क्लॉडियस सम्राट था, तब साम्राज्य और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में अकाल पड़ा था। वास्तव में जब पॉल वहां था तो इसका कुरिन्थ पर प्रभाव पड़ा। हम जानते हैं कि वह वहां कब था, क्योंकि वह वहां था जब गैलियो गवर्नर था, और गैलियो केवल एक साल के लिए गवर्नर था क्योंकि वह बीमार हो गया था। इसका असर रोम पर भी पड़ा होगा, क्योंकि क्लॉडियस वास्तव में सड़कों पर भीड़ से घिरा हुआ था क्योंकि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। रोमन प्रथा यह थी कि मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में पैदा होने वाले अनाज के आधार पर उन पर बहुत भारी कर लगाया जाता था, जिससे कभी कभी मिस्र में बच्चे भूखे मर जाते थे या कुपोषण से मर जाते थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। लेकिन रोम ने मुफ्त खाया क्योंकि यह मासिक अनाज द्वंद्व था, जहां उन्होंने यह अनाज वितरित किया था जो वहां भेजा जा रहा था। रोम वास्तव में बेड़े को नियंत्रित नहीं करता था। उस अर्थ में यह एक व्यापारी समुद्री नहीं था, लेकिन इसे व्यापारिक लोगों द्वारा चलाया जाता था, लेकिन रोम ने निश्चित रूप से इसका उपयोग किया और इसके लिए अच्छा भुगतान किया, खासकर सर्दियों में जब वहां नौकायन करना खतरनाक था। इसलिए जब भी घूमने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था तो रोम में दंगे होते थे। रोम में लगभग 10 लाख लोग रहते थे। यह भूमध्य सागरीय पुरातनता का सबसे बड़ा शहर था, और केवल बाहरी क्षेत्रों के आधार पर इसका समर्थन करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें बहुत सारा अनाज भेजना पड़ता था, और इसलिए अकाल रोम के लिए एक सतत चिंता का विषय था। यदि वे साम्राज्य में स्थिरता चाहते थे, तो वे निश्चित रूप से साम्राज्य की राजधानी में स्थिरता चाहते थे, जहां सम्राट रहता था और सीनेट थी इत्यादि। जब वह नग्नता की बात करता है तो हम न केवल यहां बल्कि अन्य अनुच्छेदों में भी नग्नता का अनुवाद करते हैं। नग्नता का मतलब हमेशा पूरी तरह से कपड़ों के बिना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब बहुत खराब कपड़े पहनना होता है। मेरी पत्नी, जब वह 18 महीने तक शरणार्थी थी, समय के अंत तक, मेरा मतलब है कि उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे। उसके पास सिर्फ चिथड़े थे, और मिस्र में, जैसा कि हम पपीरी से बता सकते हैं, औसत व्यक्ति के पास केवल एक लबादा था। आप जानते हैं, जब आप इसे धो रहे होते हैं या इसे वापस सिल रहे होते हैं तो आप क्या पहन रहे होते हैं। इसलिए बहुत से लोग इन चीजों से पीड़ित हुए। वास्तव में अकाल के संबंध में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि किसी भी समय साम्राज्य के आधे लोग या साम्राज्य के आधे से अधिक लोग भुखमरी या कुपोषण के खतरे में थे। ऐसा नहीं है कि वे भूखे मर गए या कुपोषण से मर गए, कुछ मरे, लेकिन अगर समर्थन प्रणाली, परिवार और दोस्तों के नेटवर्क और भोजन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों में कमी आई होती तो वे भूखे मर गए होते। कोई भी सटीक आंकड़ों पर बहस कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग बहुत गरीब थे, न केवल काफी गरीब बल्कि बहुत बहुत गरीब थे। वह यहां तलवार की भी बात करता है, और हम इसके बारे में सोच सकते हैं, हालांकि यह अक्सर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में युद्ध के लिए एक रूपक था। हम यहां शायद जूस ग्लैडी के बारे में सोच सकते हैं, जिसके बारे में हम रोमियो 13:4 में भी पढ़ते हैं, जहां रोम पर तलवार का अधिकार है। उन्होंने मृत्युदंड के अधिकार का प्रयोग किया। तो प्रेरितों के काम अध्याय 12 में जॉन के भाई जेम्स की तरह, या मार्क 6 में जॉन बैप्टिस्ट की तरह, रोम में तलवार का अधिकार है। रोम के एजेंटों के पास तलवार का अधिकार है। और इसलिए भले ही हमें मृत्यु का सामना करना पड़े, और इस बिंदु पर पॉल विषयांतर कर जाता है क्योंकि वह वास्तव में भजन 44 श्लोक 22 में निर्दोष पीड़ितों के बारे में इस बिंदु को घर तक पहुंचाना चाहता है। इसका संदर्भ कह रहा है, भगवान हमने क्या किया है? हम पीड़ित हैं, हम निर्दोष हैं। हम कई अलग अलग कारणों से पीड़ित हो सकते हैं। कभी कभी यह निर्णय होता है, आमतौर पर समाज या पूरी दुनिया पर कॉरपोरेट निर्णय सिर्फ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमें उसके बिना हमेशा के लिए जीने के बड़े फैसले से दूर करने के लिए, जिसे लोग चुनते हैं। लेकिन इस संदर्भ में, और अक्सर शायद ठीक है, आमतौर पर जब पॉल विश्वासियों को संबोधित कर रहा है, 1 कुरिन्थियों 11:30 इसका अपवाद प्रतीत होता है। शायद एक दूसरे के बीच मसीह के शरीर को सही ढंग से न पहचानने के कारण उपचार के उपहार बाधित हो गए थे। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब पॉल पीड़ा के बारे में बात करता है, जैसा कि रोमियो 5 में है, तो पीड़ा हमारे लिए कोई निर्णय नहीं है। हम कष्ट का सामना करते हैं, लेकिन हम इसका सामना ईश्वर के प्रेम के आश्वासन के साथ करते हैं। कम से कम हमें इसी तरह इसका सामना करना चाहिए। भगवान हमसे प्यार करता है। हमें आशा है। हम इससे गुजर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। और इसका मतलब यह नहीं है कि हमने दुख भोगने के लिए कुछ गलत किया है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो नाशवान है और प्रसव पीड़ा का अनुभव कर रही है। और इस मामले में विशेष रूप से यह तलवार सीधे मसीह की ओर से पीड़ा सहने का उल्लेख कर सकती है। खैर, पॉल द्वारा यह पत्र लिखे जाने के 10 साल से भी कम समय बाद रोम में आग लग गई। और आप जानते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो क्या होता है? एक प्रलय है। आमतौर पर नेताओं को दोषी ठहराया जाता है। आपको ऐसा होने से रोकना चाहिए था। और रोम के सम्राट के रूप में नीरो को एक बलि का बकरा चाहिए। और यह तब हुआ जब नीरो नियंत्रण से बाहर हो गया, जैसा मैंने पहले बताया था। नीरो और संभवतः टिगेलिनस ने निर्णय लिया कि ईसाई एक अच्छा बलि का बकरा बनेंगे। जोसेफस हमें बताते हैं कि नीरो की प्रेमिका और अंतःपत्नी पोपिया सबीना को यहूदी लोग पसंद थे, और साथ ही यहूदी लोग काफी बड़े थे। भले ही क्लॉडियस ने उन्हें रोम से निष्कासित कर दिया था, आप वास्तव में आग के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते थे और उन्हें मारना शुरू नहीं कर सकते थे। लेकिन ईसाई आंदोलन को कई गैर ईसाई यहूदी लोगों ने पसंद नहीं किया, और यह बहुत से अन्य लोगों को पसंद नहीं आया। यह एक अल्पसंख्यक आंदोलन था। यह इतना छोटा था कि इसने एक आसान बलि का बकरा बना दिया, यहूदी समुदाय की तुलना में एक आसान बलि का बकरा। इसलिए नीरो ने रात में अपने शाही उद्यानों को रोशन करने के लिए ईसाइयों को जिंदा जलाना शुरू कर दिया, उन्हें मशालों के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें अन्य तरीकों से मार डाला, उन्हें जंगली जानवरों के रूप में तैयार किया और उन्हें मैदान में मार डाला इत्यादि। परंपरा के अनुसार पीटर को उल्टा सूली पर चढ़ाया गया था। उसी समय पॉल को फांसी दे दी गई। पॉल द्वारा इस अनुच्छेद को लिखने के 10 साल से भी कम समय के बाद यह एक जीवन और मृत्यु संदेश है जिसे रोम के ईसाइयों को आत्मसात करने की आवश्यकता होगी, और ये हमारे लिए एक अच्छी चेतावनी भी है। कभी कभी हम सोचते हैं, अच्छा, यह केवल अन्य लोगों के साथ ही हो सकता है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कई साल पहले याद है, वास्तव में यह 1980 के दशक के मध्य में था, और मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु कह रहे थे कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्च को अनुशासित करने जा रहे थे, कि वह इस राष्ट्र का न्याय करने जा रहे थे। और निःसंदेह इसे संदर्भ से बाहर उद्धृत किया जा सकता है। जेरेमिया राइट अमेरिका पर आने वाले फैसले के बारे में बोल रहे थे और वह बाईं ओर से बोल रहे थे। पैट रॉबर्टसन ने अमेरिका पर फैसले के बारे में बात की और उन्होंने दाईं ओर से बात की और उनके आलोचकों द्वारा उन्हें उद्धृत किया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इसलिए फैसले के बारे में बात करना देशद्रोही माना जाता है, जैसा कि यिर्मयाह के दिनों में था। लेकिन मैं ऐसा था क्यों? क्या हो रहा है प्रभु? ये मुझे समझ नहीं आता। और मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने जो कहा वह यह था कि इस देश में हम अहंकारी हैं। और मैं ऐसा था, हम कैसे अहंकारी हैं? मेरा मतलब है, चर्च अहंकारी नहीं है, क्या हम हैं? लेकिन हम इस अर्थ में अहंकारी थे कि हम दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अपने भाइयों और बहनों के पीड़ित होने के बारे में जानते थे, और हम उस समय ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से उनसे बेहतर हैं, या आप जानते हैं, किसी भी कारण से भगवान हमें आराम का आशीर्वाद दे रहे हैं और यह है, ऐसे ही रहना है। लेकिन मुझे लगा कि उसने जो कहा वह यह था कि किसी दिन वह हमसे उन चीजों को छीन लेगा जिनकी हम सराहना करते हैं, ताकि हम उन चीजों को महत्व देना सीख सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। और यही इस परिच्छेद में घटित होता है। और रोमियो 13 में भी वह कहता है, दिन निकट है, रात बहुत बीत गई है, जागने का समय हो गया है। आइए ईश्वर का दृष्टिकोण अपनाएं। आइए चीजों को शाश्वत दृष्टिकोण से देखें। आइए हम दुनिया भर में एक साथ खुद को मसीह के शरीर के रूप में देखें और ऐसा न करें कि ठीक है, मैं इस देश से हूं, मैं उस देश से हूं। हम एक शरीर हैं। और अगर शरीर के एक हिस्से में दर्द होता है तो हम सभी को दर्द होता है, और हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 8:9 यरूशलेम में जरूरतमंदों की मदद करने के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी मैं चीजों पर चलता रहता हूं, तो चलिए मैं इस परिच्छेद पर वापस आता हूं। विश्वासियों को पहले से ही बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा था। मैंने आपको अपार्टमेंट इमारतों के बारे में बताया था और रोम में अधिकांश लोग गरीब थे और उनके पास बहुत खराब आवास थे। और फिर भी पॉल का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दौर से गुजरते हैं, जिसमें ये सभी चीजें शामिल हैं जो उसने गिनाई हैं, जो उसे सिर्फ रोम के लिए नहीं करना था, वह इसे कहीं भी कर सकता था। लेकिन इन सभी चीजों में हम विजेताओं से कहीं अधिक हैं। हम उस व्यक्ति के कारण अत्यधिक विजयी हैं जिसने हमसे प्रेम किया। हम जानते हैं कि वह हमसे प्यार करता था। कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। यही हमारे पास हमेशा रहेगा। मैं मंत्रालय के साथ भी जानता हूं, मैं इस मंत्रालय या उस मंत्रालय में फंस जाता हूं और मुझे लगता है, आप जानते हैं, मुझे यह करना होगा, मुझे वह पूरा करना होगा। और मुझे याद है कि एक बार मैं पूजा में गया था, और जैसे ही मैं पूजा में गया तो मुझे तुरंत आत्मा का एहसास हुआ, और मैंने महसूस किया कि भगवान मेरे दिल को आश्वस्त करते हैं, आप जानते हैं, यह अच्छा है कि आप यह कर रहे हैं, और यह अच्छा है कि आप यह कर रहे हैं, और यह अच्छा है कि आप यह हैं, और यह अच्छा है कि आप वह हैं। लेकिन किसी दिन आप वो सब चीजें नहीं रहेंगे, लेकिन जो तुम हमेशा रहोगे वह मेरा बच्चा है। इसलिए हम अक्सर अपनी पहचान अपने काम से करते हैं, यहां तक कि उस काम से भी जो हम प्रभु के लिए करते हैं, और यह गलत नहीं है। पॉल भी अपनी पहचान इसी तरह बताता है। लेकिन जब हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ होते हैं, चाहे वह पॉल हो, चाहे वह आप हो, चाहे वह मैं हो, हम हमेशा जो रहेंगे, जो हम सबसे बुनियादी रूप से हैं, वह ईश्वर के बच्चे हैं। और कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वह कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करता है जो हमें अलग नहीं कर सकती। वह श्लोक 38 और 39 में आता है। श्लोक 38 में वह शासकों और अधिकारियों या शासकों और शक्तियों के बारे में बात करता है। आमतौर पर जब पॉल उस भाषा का उपयोग करता है तो वह मनुष्यों की बात कर रहा होता है। वह आमतौर पर शासकों और अधिकारियों को संदर्भित करता है, लेकिन यहाँ श्लोक 38 में इसे स्वर्गदूतों से जोड़ा गया है। इसलिए मैं बस विषयांतर करना चाहता था और इस पर कुछ टिप्पणियां करना चाहता था। यहूदी लोग कभी कभी स्वर्गदूतों की श्रेणी के बारे में बात करते थे। यह आपके पास हनोक साहित्य वगैरह में है। वे कभी कभी राष्ट्रों के स्वर्गदूतों, आध्यात्मिक शासकों के बारे में भी बात करते थे जो सांसारिक शासकों के पीछे थे। आपके पास वह व्यवस्था विवरण 32.8 के सेप्टुआजेंट अनुवाद में है। आपके पास यह डैनियल 10 में है। ग्रीस के राजकुमार और फारस के राजकुमार मिकेल, माइकल, भगवान के लोगों के राजकुमार, इसराइल के अभिभावक देवदूत के खिलाफ खड़े हैं। खैर, वास्तव में किसी और के खिलाफ खड़ा हूं। माइकल वास्तव में गैब्रियल की मदद करने में सक्षम था। लेकिन आपका यह विचार बहुत सारे यहूदी साहित्य में और फिर हनोक साहित्य में विकसित हुआ है, जहां बाद में रब्बियों ने इसके बारे में बहुत कुछ बोला। तो यदि इस संसार के शासक हमारे विरुद्ध हों तो क्या होगा? तो क्या होगा यदि नीरो सीजर हमारे विरुद्ध है? अंततः वे भविष्य को नियंत्रित नहीं करते हैं। वे भविष्य को अपने हाथ में नहीं रखते। इतिहास के, अतीत के सभी साम्राज्य अब धूल में मिल गए हैं। सभी साम्राज्य, मानव साम्राज्य अंततः गिर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय आ रहा है जब इस दुनिया का राज्य हमारे भगवान और उनके अभिषिक्त, उनके मसीहा का राज्य बन जाएगा। इसलिए भले ही हम स्वर्गीय स्थानों के शासकों और अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसीह को उनसे ऊपर ऊंचा किया गया है और हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, इफिसियों का कहना है। हमें संसार में आध्यात्मिक शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ आध्यात्मिक युद्ध के कुछ रूपों के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने देखे हैं। जहाँ कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं इस प्रार्थना सभा में यह सोचकर गया था कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर इसके बजाय लोग इन स्वर्गीय शक्तियों को संबोधित करते हुए कह रहे थे, हमने तुम्हें कास्ट किया है नीचे। प्रार्थना सभा के अंत तक उनके बोलने के तरीके से पूरी दुनिया का ध्यान बदल जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। मेरा मतलब है डैनियल 10 में, जहां यह वास्तव में इन स्वर्गीय शक्तियों के बारे में बात करता है, यह डैनियल द्वारा उन्हें नीचे गिराने की कोशिश के बारे में बात नहीं करता है। यह डैनियल द्वारा ईश्वर से प्रार्थना जारी रखने की बात करता है और फिर ईश्वर अंततः इसे संबोधित करता है। और डैनियल की प्रार्थना को पहले ही भगवान ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन आखिरकार डैनियल को इसके बारे में संदेश मिल गया। तो आप जानते हैं, बाइबल में यही एक जगह है जो वास्तव में प्रार्थना के संदर्भ में इसके बारे में बात करती है। ऐसा करने के लिए हमारे पास बाइबल में कोई मिसाल नहीं है। मेरा मतलब है, कभी कभी बाइबल में आपको यहेजकेल जैसा पहाड़ों या किसी चीज के बारे में भविष्यवाणी करते हुए दिखाया गया है। कभी कभी आपके पास प्रतीकात्मक कार्य होते हैं जहां यह विशेष रूप से भगवान की आत्मा द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास वह तरीका नहीं होता जिस तरह से लोगों ने आध्यात्मिक युद्ध किया है, जिसे वे आज आध्यात्मिक युद्ध कहते हैं। और विशेष रूप से जब आप जानते हैं लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं या उन्हें कोस रहे हैं। दो पत्रस दो और यहूदा की पुस्तक भी आध्यात्मिक युद्ध के उस दृष्टिकोण का बहुत दृढ़ता से विरोध करती प्रतीत होती है। मेरा मतलब है, हमारे पास सुसमाचारों में यह एक बात है कि आप लोगों को देखते हैं, हम यीशु को सुसमाचारों में देखते हैं, और आप उनके अनुयायियों को अधिनियमों में राक्षसों को बाहर निकालते हुए देखते हैं जब वे किसी में होते हैं, लेकिन वह अलग है। यह जमीनी स्तर जैसा है, यह उससे भिन्न है। आप जानते हैं, हवाई सहायता के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं, हम उसके स्वर्गदूतों पर निर्भर हैं, हम नहीं हैं, और वैसे भी आप जानते हैं। लेकिन इन स्वर्गदूतों को सांसारिक शासकों के पीछे रहने वाले के रूप में देखा जा सकता है, और पॉल कहते हैं ये हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, जीवन और मृत्यु ही हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। खैर, रोमियो 8 के बाद मुझे यकीन है कि आपका गणित मेरे जितना अच्छा है। हमारे पास रोमियो अध्याय 9, रोमियो अध्याय 9 से 11 तक हैं। रोमियो 9 की शुरुआत में पौलुस ने पवित्र आत्मा के हमारी आत्मा के साथ गवाही देने के बारे में बात की। अब वह कहता है, मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है। शायद अध्याय 1 में वह फिर से भगवान की गवाही का हवाला दे रहा है, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी उसे गलत न समझे। वह इस बारे में बात कर रहा है, आप जानते हैं, अन्य जाति ईसाइयों का ईश्वर की संतान के रूप में स्वागत है। अन्य जाति ईसाइयों, साथ ही यहूदी विश्वासियों ने इस नए पलायन, मुक्ति के इस नए युग का अनुभव किया है। यहूदी लोग ऐसे नहीं थे, अधिकांश यहूदी लोगों ने पॉल के संदेश को नहीं अपनाया था, और पॉल नहीं चाहता कि आप उस बिंदु को भूल जाएं जहां पुराना नियम अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम इत्यादि के बारे में बात करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों की परवाह करना बंद नहीं किया है। पॉल अध्याय 9 और पद 2 में अपने हृदय में निरंतर दुहक की बात करता है। अब आप इसे कैसे संभालते हैं जब फिलिप्पियों 4:4 प्रभु को हमेशा प्रसन्न रखने की बात करता है, और फिर मैं कहता हूं आनंद मनाओ। प्रत्येक में अतिशयोक्ति का एक तत्व हो सकता है, जिसमें रोने का समय होता है और आनंद मनाने का भी समय होता है। लेकिन जब पॉल अपने लोगों को याद करता है तो उसके दिल में नियमित रूप से यह दुहक होता है, और वह कहता है कि मैं अपने लोगों की ओर से स्वयं को शापित या मसीह से अलग होने की कामना कर सकता हूं। अब क्या वह अपने लोगों की खातिर मसीह से अलग हो सकता है? वह पहले ही कह चुका है कि कुछ भी हमें मसीह से अलग नहीं करता है। उन्होंने बस इतना ही कहा है, इसलिए पॉल को शाप नहीं मिलता। लेकिन यह विचार बिल्कुल वैसा ही है जैसे मूसा अपने लोगों के लिए नष्ट होने को तैयार था। भगवान ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया, और परमेश्वर कहता है, मैं जीवन की पुस्तक में से उन लोगों का नाम मिटा दूंगा जिन्हें मिटा देना चाहिए। इसलिए वह मूसा को कलंकित नहीं करेगा। लेकिन पॉल यहां मूसा की तरह बोलता है, लेकिन वह यह भी मानता है कि जैसे ईश्वर बाद में अनुच्छेद में कहने जा रहा है, या पॉल भी निर्गमन की पुस्तक का हवाला देते हुए अनुच्छेद में बाद में कहने जा रहा है, भगवान कहते हैं, मुझे जिस पर दया है उस पर दया करूंगा, जिसमें शामिल है मूसा। वह उस परिच्छेद में मूसा से बात कर रहा है। अध्याय 9 श्लोक 4 और 5, हमारे पास यहां पॉल का विवरण है। वह अध्याय 3 में वापस विचार पर आता है, जहां वह पूछता है, जातीय रूप से यहूदी होने का क्या फायदा है, और पॉल इसका पूरी तरह से वर्णन श्लोक 4 और 5 में करने जा रहा है। वह अंत की पुनरावृत्ति के साथ स्त्री संज्ञाओं की एक श्रृंखला देता है। ऐसा इसलिए है कि यदि आप इसे ग्रीक में सुन रहे हैं तो यह ऐसा है, वाह, पॉल वास्तव में एक अच्छा लेखक है। तो ऐसे चलते हैं। पहला सिया के साथ समाप्त होता है, फिर आ, फिर मैं, अगला सिया, फिर आ और फिर मैं। वह कहता है कि उनके पिता हैं, उनके पूर्वज हैं। बाद में 11:28 में वह कहेगा कि वे पिता के कारण प्रिय हैं। वह नमथासिया कानून देने के बारे में भी बात करने जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ ये चीजें नहीं हैं, बल्कि कुछ चीजें भी हैं जो सभी विश्वासियों द्वारा अनुभव की जाती हैं। वह उनके गोद लेने और महिमा, आध्यात्मिक सेवा, पुरोहिती प्रकार की सेवा और वादों के बारे में बात करता है। खैर, रोमनों में कहीं और गोद लेने की बात उन्होंने अभी 8:15 और 8:23 के बारे में बात की है, यह विश्वासियों के लिए है। महिमा, ठीक है, हम महिमा पाने जा रहे हैं, 8:18, 8:21। आध्यात्मिक सेवा, इसलिए उस पर बाद में आएं। 12:01 वह जगह है जहां वह फिर से उसी शब्द का उपयोग करता है, जहां हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि हमारी सेवा है, भगवान के सामने हमारी पुरोहिती सेवा है। और वादे, 1:02 और 4:16 में हम भी वादों के उत्तराधिकारी हैं। तो ये बातें इज़राइल को दिए गए वादे थे, और हमने उनमें से कुछ का अनुभव भी किया है। और फिर वह 5 मसीह के बारे में बात करता है, जाहिर तौर पर मसीह जो परमेश्वर है। फिर यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ विद्वान विभाजित हैं, हालांकि मुझे लगता है कि वे सिर्फ इसलिए विभाजित हैं क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि पॉल आमतौर पर यीशु के लिए उस पदनाम का उपयोग नहीं करता है। वह विभिन्न तरीकों से यीशु की दिव्यता की बात करता है। नाइकिया की परिषद के बाद मुझे लगता है कि हम और अधिक पेशेवर हो गए और हमें इसे संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दों का उपयोग करना पड़ा। और नाइकिया से पहले भी लोग इस प्रकार के विवरणों के बारे में बहस कर रहे थे, और इससे हमें सटीक होने में मदद मिलती है। लेकिन पॉल और अन्य नए नियम के लेखक यीशु के ईश्वरत्व के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जो उनके समय में समझ में आती थी। यीशु के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं, वह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला है। भला परमेश्वर की आत्मा को उंडेलने का अधिकार किसके पास है? इसलिए जब जॉन बैप्टिस्ट अपने बाद आने वाले एक व्यक्ति के बारे में बात करता है जो आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा, तो आपको यह विचार मिलता है कि उसके बाद आने वाला दिव्य है। यीशु कहते हैं, हे यरूशलेम, मैं तेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करना चाहता हूँ। खैर, यह उस प्रकार का वर्णन है जिसका उपयोग भजनों में ईश्वर के लिए किया गया है, और समकालीन यहूदी साहित्य और सभा में ईश्वर के लिए किया गया है। यहाँ तक कि यहूदी धर्म में परिवर्तित लोगों को भी उन लोगों के रूप में देखा जाता था जो शकीना के पंखों के नीचे, भगवान की उपस्थिति के पंखों के नीचे आए थे। यह नए नियम में हर जगह मौजूद है। यह निश्चित रूप से रहस्योद्घाटन है। यह हर जगह है। अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत, ईश्वर के लिए ईसाई भाषा। यह पिता पर लागू होता है। यह यहाँ यीशु पर भी लागू होता है। तो प्रकाशितवाक्य की पुस्तक में वह पहला और आखिरी है। वह आरंभ और अंत है। एक जगह उसे आदि कहते हैं। तो यह वहां है, लेकिन यह आमतौर पर उस भाषा का उपयोग नहीं करता है। लेकिन चूंकि यह वहां है, अन्य मामलों में भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वह कहता है कि मसीह शरीर के अनुसार इसराइलियों में से है। मसीह स्पष्ट रूप से यह कहता है, वह ईश्वर है जो सबसे ऊपर धन्य है। इसका उस तरह से अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसके बारे में चिंतित नहीं हैं, तो यह अनुवाद करने का सबसे सामान्य तरीका लगता है। यह अजीब है। वह उसे ऐसा क्यों कहते हैं? प्रभु अपने आप में एक दैवीय उपाधि थी। अक्सर पॉल इसका उपयोग जिस तरह से करता है, यह हमेशा वैसा नहीं होना चाहिए जैसा सामान्यता हम भगवान सामान्यता वैसा ही होगा। लेकिन भगवान यह हो सकता है कि निश्चित रूप से पॉल इसे इस तरह से उपयोग करता है, कभी कभी बहुत स्पष्ट रूप से इसे इस तरह से उपयोग करता है, 1 कुरिन्थियों 8:6 और इसी तरह। पिता और यीशु से पॉल के परिचयात्मक आशीर्वाद, हमने रोमियों 1 में इसके बारे में बात की थी। पॉल भगवान के बारे में पुराने नियम के ग्रंथों को यीशु पर लागू करता है। 1 कुरिन्थियों 8, फिलिप्पियों 2 में शेमा, जहां हर घुटना झुकेगा, हर जीभ कबूल करेगी, यशायाह 45, वह भगवान के सामने बात कर रहा है। खैर, फिलिप्पियों 2 में इसे यीशु पर लागू किया गया है क्योंकि उसे प्रभु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यहां तक कि रोमियों 10:13 में भी, जो कोई उसे प्रभु के नाम से बुलाएगा वह बच जाएगा। ठीक है, उसने अध्याय 10:9-10 में उसे प्रभु के नाम से पुकारने का वर्णन किया है, जैसे कि अपने मुंह से यह स्वीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए चूंकि पॉल ने अन्यत्र रोमनों सहित यीशु के देवता का वर्णन किया है, इसलिए यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि वह यहाँ एक और शब्द का उपयोग करता है, भले ही यह उसका सामान्य शब्द नहीं है। उसे एक स्तुतिगान में भगवान के रूप में वर्णित करने के लिए, जो आम तौर पर केवल प्रशंसा करता है ईश्वर। खैर, जैसा कि हमने पहले कहा, रोमियों 9:11 में पॉल अपने तर्क के केंद्र में आता है। यहूदी लोगों का मानना था कि उन्हें इब्राहिम में चुना गया था, लेकिन पॉल ने कहा, क्योंकि वे सभी जो इज़राइल से हैं, 6 इज़राइल नहीं हैं, 7, और नहीं क्योंकि वे इब्राहिम के बीज हैं, वे सभी उसके बच्चे हैं, वरन इसहाक में 13 वंश कहलाएगा। सारा के मरने से पहले इब्राहिम के कितने बेटे थे? मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि सारा की मृत्यु के बाद उत्पत्ति 25 में उसके अन्य लोग थे, लेकिन उसके 2 थे, सारा द्वारा इसहाक और हाजिरा द्वारा इश्माएल। अच्छा, वादा किसको मिला? इस मामले में दोनों धन्य थे। इश्माएल के लिए भी आशीर्वाद था, लेकिन इसहाक ने वादा प्राप्त किया। इसहाक के कितने पुत्र थे? ठीक है, उसके पास 2 थे, याकूब और एसाव, लेकिन किसको वादा मिला? और पॉल का कहना यह है कि इब्राहिम से जातीय वंश पर्याप्त नहीं है। यदि पहली पीढ़ी के सभी लोगों को वादा नहीं मिला, यदि सभी दूसरी पीढ़ी को वादा नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि अब सभी को वादा मिल गया है? जब निर्गमन हुआ, तो अधिकांश इसराइल ने मूसा की आज्ञा नहीं मानी और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए जैसा कि मूसा कहता है, यह मैं नहीं हूं जिसके विरुद्ध तुम बोलते हो, यह प्रभु है। और वह पीढ़ी जंगल में मर गई। और भजनहार कहता है, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा उन्होंने जंगल में किया था। कुछ पीढ़ियां दूसरों की तुलना में बेहतर थीं, लेकिन यह स्वचालित नहीं था कि आप केवल इब्राहिम के वंशज होने से बच गए, और आप केवल अपनी जातीयता के आधार पर या अपनी विरासत के आधार पर एक ईसाई से अधिक कुछ नहीं मान सकते। चर्च में पलाबधा कोई व्यक्ति कह सकता है, ठीक है, मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूँ और दादा दादी अच्छे ईसाई हैं, चाहे कुछ भी हो मैं भगवान के साथ रहूंगा। तुम्हें भी मसीह को स्वीकार करना होगा। बहुत से लोग जो इसके साथ बड़े हुए हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कब किया। उन्होंने यह किया है, और यही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हमें इसकी जरूरत है। हम सिर्फ अपनी विरासत पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, भगवान का कोई पोता पोता नहीं होता, लेकिन चुनाव अनुग्रह से हुआ था। यह योग्यता के आधार पर नहीं था। अब क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमें बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के पूर्वनियत करता है? खैर, पॉल को इसमें शामिल नहीं होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर पहले ही बात हो चुकी है। अन्य लोग पहले से ही उन चीजों के बारे में सोचते थे। यहूदी परंपरा में वे मानवीय जिम्मेदारी और ईश्वर की संप्रभुता दोनों को स्वीकार करते हैं। अब जोसेफस जो चीजों को ग्रीक दार्शनिक संप्रदायों के समानांतर करने की कोशिश कर रहा है का कहना है कि एसेंस पूरी तरह से पूर्वनीतिवादी थे। सदूकी प्रोविडेंस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वे अधिक हद तक एपिक्यूरियन की तरह थे। वे पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। जोसेफस ने उन्हें एपिक्यूरियन दार्शनिकों के रूप में दर्शाया है। और फिर वह फरीसियों को अत्यंत लोकप्रिय स्टोइक संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक तरह से बीच में है जहां वे कहते हैं, दूसरी ओर वे अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। वे ईश्वर की संप्रभुता और मानवीय जिम्मेदारी दोनों की बात करते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में मृत सागर स्क्रॉल पढ़ते हैं तो हमारे पास सदूकियों के लेख नहीं बचे हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में मृत सागर स्क्रॉल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां भी दोनों में से कुछ है। स्पष्ट रूप से वे पूर्वनीतिवादी थे, लेकिन वे मानवीय पसंद और निश्चित रूप से मानवीय जिम्मेदारी में भी विश्वास करते थे। तो इस समय यह उस तरह की बहस नहीं थी। ग्रीक पिताओं ने जिस तरह की बात की, उन्होंने उस तरह से स्वतंत्र इच्छा पर जोर दिया जिस पर हमने जोर नहीं दिया है, मुझे लगता है, बाइबल में, क्योंकि उन्हें अपने समय के दार्शनिक रुझानों में बढ़ते नीतिवाद का मुकाबला करना था, खासकर ज्योतिष आदि के माध्यम से। यूनानी पिताओं ने अपनी संस्कृति में स्वतंत्र इच्छा बनाम मनमाने नीतिवाद पर जोर दिया। ऑगस्टीन ने अपने शुरुआती लेखन में इस पर विश्वास किया था। अपने बाद के लेखन में ऑगस्टाइन ने पूर्वनियति पर बहुत अधिक जोर दिया है क्योंकि वह मानव पूर्णता पर पेलागियस के जोर का मुकाबला करना चाहता है। इसलिए वे जो संबोधित कर रहे हैं उसके संदर्भ में विभिन्न स्रोतों को लेना और वे जो संबोधित कर रहे हैं उसके संदर्भ में उनका जोर देना महत्वपूर्ण है। और पॉल के दिनों में आपको इस प्रकार का जबरन चुनाव नहीं करना पड़ता था जिसके बारे में कुछ लोग आज बात कर रहे हैं। अध्याय 9 श्लोक 11 से 13 में वह स्पष्ट रूप से पूर्वनियति पर जोर देता है। वह स्पष्ट रूप से भगवान की पसंद पर जोर दे रहा है। परमेश्वर ने याकूब को उसके जन्म से पहले ही चुन लिया और उससे प्रेम किया। और आप कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पहले से पता था कि जैकब की पसंद क्या होगी, और मामला भी यही हो सकता है। मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अध्याय 8 में फोरेक्न्यू शब्द को कैसे लेते हैं। लेकिन किसी भी मामले में मुद्दा यह है कि यह भगवान के उद्देश्य और आह्वान के बारे में है। यह हमारी योग्यता के बारे में नहीं है। यह भगवान की कृपा है जो हमें बचाती है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम स्वयं करते हैं। यह ईश्वर है जो हमारे अंदर कार्य करता है। पॉल के लिए वह इस पर सभी प्रकार के विभिन्न कोणों से आता है, लेकिन पॉल के लिए यह हमेशा भगवान है। यह हमेशा मसीह है। यह हमेशा आत्मा है। यह इसी बारे में है। मुक्ति ईश्वर के लिए जीने का सशक्तिकरण और ईश्वर के लिए सेवा करने का सशक्तिकरण, यह ईश्वर से ही आता है। और यह हमारे लिए उसकी स्तुति करने और उसे महिमा देने का एक कारण है, जैसा कि पॉल इस खंड 9 से 11 के अंत में करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और जैसा कि पॉल मदद नहीं कर सकता है, यहां तक कि स्तुतिगान के साथ फूट भी सकता है, चाहे आप इसे कैसे भी ले, स्तुतिगान अध्याय 9 और श्लोक 5 में। और हमें भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम अगले सत्र में अध्याय 9 के बारे में और जानकारी लेंगे। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 8:23 से 9:16 पर सत्र 10 है।